अब हम भाषा विज्ञान नामक एक दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। भाषा विज्ञान, भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाली ज्ञान की शाखा को भाषा विज्ञान कहा जाता है। सामान्यतः विज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से लिया जाता है जो देश एवं काल की दृष्टि से अपरिवर्तनीय होता है, किंतु विज्ञान का वास्तविक अर्थ है किसी भी विषय का व्यवस्थित ज्ञान। संकलित सामग्री के विवेचन से प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित ज्ञान की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस व्यवस्थित ज्ञान का विवेचन कार्य कारण संबंध पर आधारित होता है, साथ ही इस विवेचन से कुछ सामान्य नियमों का निर्धारण भी होता है। भाषा एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का व्यवस्थित ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है। अर्थात भाषाओं का व्यवस्थित दृष्टियों से अध्ययन करना एवं उसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना ही भाषा विज्ञान का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार भाषा विज्ञान एक तरफ भाषा सामग्री का विवेचन विश्लेषण करता है तो दूसरी तरफ भाषा की रचना एवं उसके प्रयोग से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। नाम, आजकल हिंदी में भाषा विज्ञान का शब्द का प्रयोग अंग्रेजी लिंग्विस्टिक अर्थ में होता है। इसी अर्थ के द्योतक कई नाम और भी प्रचलित हैं, यथा भाषा शास्त्र, तुलनात्मक शास्त्र, तुलनात्मक भाषा शास्त्र, भाषिकी, भाषा लोचन आदि। तात्विक दृष्टि से इन नामों में कोई विशेष अंतर नहीं है। यह सोचना भ्रामक होगा कि शास्त्र शब्द से इस विषय के कलात्मक अथवा अवैज्ञानिक होने का बोध होता है, एवं विज्ञान शब्द जोड़ने से भाषा संबंधी अध्ययन अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के समान हो जाता है। रसायन शास्त्र कहने पर भी रसायन संबंधी अध्ययन विशुद्ध विज्ञान का बोधक है, तथा मनोविज्ञान कहने पर मानव मन का यह अध्ययन जीव विज्ञान की भांति विशुद्ध विज्ञान नहीं है। इस दृष्टि से यह नाम इतना अधिक ग्रहण हो चुका है कि अब इस पर न तो और अधिक विचार की आवश्यकता है और न ही इसे बदलने की। वैसे यह सार्थक भी है। यहाँ एक बात यह कह देने आवश्यक है कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्ययन तुलनात्मक भाषा पद्धति पर ही आधारित है, पर आज के भाषा विज्ञान के अध्ययन को केवल तुलनात्मक भाषा विज्ञान के नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता। तुलनात्मक शब्द व्याकरण की तुलना से अवश्य आया, पर आज यह तुलनात्मकता को ग्रहण करते हुए भी उससे कई कदम आगे बढ़ गया है। आज यह अध्ययन समकालीन भी हो सकता है। भाषा विज्ञान के संदर्भ में दोनों नामों भाषा शास्त्र एवं भाषा विज्ञान पर सर्वाधिक विवाद रहा। फिलालाजी यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मूल अर्थ प्रेम की भाषा है, एवं लिंग्विस्टिक का विकास लैटिन लिग्वा शब्द से हुआ। कतिपय विद्वानों की यह धारणा है कि भाषा शास्त्र के अंतर्गत पुराने साहित्य एवं शिलालेखों की भाषाओं का अध्ययन किया जाता है और भाषा विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक जीवित भाषाओं एवं बोलियों का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है सर्वमान्य नहीं है। भाषा जीवित समकालीन एवं प्राचीन भाषाओं का अध्ययन एक ही साथ एक ही पुस्तक में होता है। अतः ज्ञान विज्ञान की इस पद्धति का नाम भाषा विज्ञान देना अधिक उपयुक्त एवं संगत है। भाषा विज्ञान का स्वरूप, भाषा विज्ञान के स्वरूप के संबंध में मुख्य प्रश्न यह उठता है कि वह विज्ञान है या कला। भाषा विज्ञान के स्वरूप निर्धारण के पूर्व कला एवं विज्ञान के अंतर को समझ लेना आवश्यक है। विज्ञान सामग्री प्रधान होता है, जहाँ वैधानिक अध्ययन में समान सामग्री से समान निर्णय निकालना संभव है, वही कला रुचि प्रधान होती है। इसलिए एक ही भाषा विषय से संबंधित सामग्री द्वारा विभिन्न रुचि वाले कलाकारों द्वारा विभिन्न रचनाएं संभव है। उदाहरण के लिए विभिन्न वैज्ञानिक किसी पौधे के अध्ययन से संबंधित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, पर विभिन्न कलाकार उस पौधे को अपनी अपनी रुचि के अनुरूप विभिन्न प्रकार से चित्रित कर सकते हैं। एक अंतर और, वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य मात्र उत्कंठा की तृप्ति होता है, पर कलात्मक अध्ययन के पीछे एक निश्चित ध्येय अथवा उपयोगिता होती है। इस दृष्टि से विज्ञान के लिए विशेष साध्य होता है, किंतु कला के लिए साधन। रेखाओं का अध्ययन रेखागणित विज्ञान में यदि साध्य है तो चित्रकला के निर्माण में उन्हीं रेखाओं का योग साधक है। विज्ञान विकल्प रहित और कला विकल्प सहित होती है। भाषा विज्ञान के अध्ययन की सामग्री भाषा है, उसके बिना भाषा विज्ञान का स्वरूप ही निर्मित नहीं हो सकता। अतः यह सामग्री प्रधान विषय है, इसमें व्यक्तिगत रुचियों का कोई स्थान नहीं। भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान का साध्य है, वह और किसी विषय के अध्ययन का साध्य नहीं। भाषा रचना संबंधी निर्मित नियम तात्विक दृष्टि से अपवाद रहित होते हैं। इतना होने पर भी भाषा विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक विज्ञान जड़ एवं विचार रहित पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जबकि भाषा विज्ञान भाषा का अध्ययन करता है जिसका प्रयोग मनुष्य करता है जो चेतन एवं विचारशील प्राणी है। इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान द्वारा प्रस्तुत भाषा संबंधित सामग्री का बहुत कुछ उपयोग भी होता है। इस तरह इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों तथा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि के समान ही समझना चाहिए। अतः भाषा विज्ञान को वैज्ञानिक कला अथवा कलात्मक विज्ञान कहना अधिक उपयुक्त होगा। भाषा विज्ञान के विभाग। हर विषय या विज्ञान अपने आप में पूर्ण होता है, अतः किसी भी विषय का विभाग करना सरल नहीं, किंतु अध्ययन की सुविधा को दृष्टि में रखकर भाषा विज्ञान के भी विभाग किए जाते हैं। भाषा विज्ञान चूंकि भाषाओं के व्यवस्थित अध्ययन का विज्ञान है, इसलिए भाषा के अंग ही भाषा विज्ञान के विभाग हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि भाषा के दो पक्ष हैं, अनुभूति एवं अभिव्यक्ति। अनुभूति पक्ष सीधे अर्थ से संबद्ध है, अतः जिस ज्ञान में भाषाओं के अर्थ का अध्ययन होता है उसे अर्थ विज्ञान कहा जाता है। अभिव्यक्ति पक्ष में स्वन कोष्ठ में ध्वनि रूप एवं वाक्य आता है। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। भाषा विज्ञान का वह विभाग जिसमें वाक्य का अध्ययन किया जाता है उसे वाक्य विज्ञान कहा जाता है। वाक्य एक विभाज्य इकाई है, वह जिन सार्थक एवं लघुत्तम इकाइयों में विभाजित हो सकता है उसे रूप कहते हैं। भाषा विज्ञान का वह भाग जो रूप का अध्ययन करता है रूप विज्ञान कहलाता है। रूपों की रचना स्वनों से होती है। स्वन भाषा की लघुत्तम इकाई है। स्वन विज्ञान भाषा विज्ञान का वह विभाग है जिसमें स्वनों का अध्ययन होता है। भाषा विज्ञान का एक और विभाग रूप स्वनिम विज्ञान है। इसके अंतर्गत रूपों में होने वाले स्वनिमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कुछ लोग शब्द विज्ञान या शब्दावली विज्ञान को अलग विभाग मानते हैं, पर यह रूप विज्ञान के ही अंतर्गत आता है। आजकल शैली विज्ञान भाषा विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्वीकृत हुआ है। इसके अंतर्गत भाषा का शैलीगत अध्ययन होता है। नीचे की तालिका में भाषा के अंगों एवं भाषा विज्ञान के विभाग का परस्पर संबंध दर्शाया गया है। एक तरफ भाषा के अंग तथा दूसरी तरफ भाषा विज्ञान के विभाग। पहली तरफ अर्थ तो दूसरी तरफ अर्थ विज्ञान, पहली तरफ वाक्य तो दूसरी तरफ वाक्य विज्ञान, तीसरी तरफ रूप तो दूसरी तरफ रूप विज्ञान। इस तरह से क्रम चलता है। स्वन स्वन विज्ञान, रूप एवं स्वन रूप स्वनिम विज्ञान, शब्द शब्द विज्ञान, शैली शैली विज्ञान। अगले परिच्छेदों में हम हर विभाग के कार्यों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान का वह विभाग है जिसके अंतर्गत भाषा के अर्थ तत्वों का अध्ययन होता है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि एवं अर्थ के परस्पर संबंध तथा ध्वनियों के युग्म से अर्थ की व्युत्पत्ति आदि का विवेचन होता है। इसमें अर्थ की संरचना में सहायक संकेत, ग्रह के साधक एवं बाधक तत्वों, उसकी विभिन्न स्थितियों, उसके परिवर्तन के कारणों, दिशाओं एवं परिणामों का अध्ययन विश्लेषण होता है। अर्थ विज्ञान भाषा की अर्थ व्यवस्था का भी वर्णन करता है। उदाहरणार्थ वह यह बताता है कि कुशल शब्द का अर्थ कैसे कुश लाने में प्रवीण से हर कार्य में प्रवीण हो गया, मृग शब्द का अर्थ कैसे प्रत्येक प्राणी से संकुचित होकर केवल प्राणी विशेष हिरण रह गया। वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य की रचना एवं उसके गठन का विवेचन विश्लेषण होता है। यह अध्ययन सैद्धांतिक भी हो सकता है, साथ ही किसी भाषा विशेष का भी। विज्ञान के अंतर्गत वाक्य की सीमाओं, वाक्य के विभिन्न भागों, वाक्य के संचालक तत्वों आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य के विभिन्न प्रकारों एवं उनकी समानता असमानता के विवेचन भी वाक्य विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में आता है। उदाहरणार्थ अच्छी कलम अच्छी लिखती है, यहाँ एक ही शब्द अच्छी दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार भिन्न परिस्थितियों में। प्रथम प्रयोग में वह कलम की विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण हुआ, दूसरे प्रयोग में वह क्रिया शब्द लिखना की विशेषता बताता है इसलिए क्रिया विशेषण हुआ। रूप विज्ञान। रूपों के अध्ययन का कार्य रूप विज्ञान के अंतर्गत होता है। रूप भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। यदि किसी वाक्य को सार्थक इकाइयों में विभाजित करते जाएं, तो अंतिम अविभाजित सार्थक इकाई रूप कहलाएगी। रूप विज्ञान के अंतर्गत रूपों की रचना, रूपों के प्रकार, रूपात्मक प्रक्रिया, अर्थ तत्व एवं संबद्ध तत्व आदि का विवेचन होता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय लगाकर दूसरे शब्दों की निर्माण प्रक्रिया, ज्ञान से अज्ञान, विवेक से अविवेक, दूरदर्शी से अदूरदर्शी, आवश्यक से आवश्यकता एवं शब्दों में रूपांतर आदि के द्वारा किसी शब्द के विभिन्न विकारी रूप बनाना एवं उसका विवेचन आदि रूप विज्ञान के ही अंतर्गत होता है। विभिन्न व्याकरणात्मक शब्दों का विवेचन भी रूप विज्ञान का कार्य है। ध्वनि विज्ञान ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसके उच्चारण में सहायक उच्चारण अवयवों की रचना, ध्वनियों का निर्माण, ध्वनियों का वहन एवं श्रवण, ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि योगों की रचना आदि विषयों का विवेचन ध्वनि विज्ञान के अध्ययन का विषय है। किसी भाषा विशेष की ध्वन्यात्मक संरचना का वर्णन विवेचन भी ध्वनि विज्ञान का विषय है। ध्वनि के अध्ययन की अनेक पद्धतियां हैं। यदि ध्वनि का अध्ययन उच्चारण अंगों के संदर्भ में किया जाता है तो उसे औच्चारणिक पद्धति की संज्ञा दी जाती है। उच्चारण के पश्चात ध्वनि वायु तरंगों पर प्रवाहित होती है। इस स्थिति की ध्वनियों का अध्ययन तरंगात्मक पद्धति कहलाता है। ध्वनि की सार्थकता श्रवण में है। श्रवण को आधार बनाकर ध्वनियों का अध्ययन श्रवणात्मक पद्धति कहा जाता है। विभिन्न यंत्रों की सहायता से किया गया ध्वनियों का अध्ययन प्रायोगिक पद्धति के अध्ययन क्षेत्र में आता है। ध्वनि विज्ञान के दो भाग किए जाते हैं, एक है स्वन विज्ञान एवं दूसरा स्वनिम विज्ञान। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत समस्त ध्वनियों का अध्ययन होता है, जबकि ध्वनिग्राम विज्ञान के अंतर्गत विशिष्ट ध्वनियों का अध्ययन होता है। रूप स्वनिम विज्ञान रूप स्वनिम विज्ञान के अंतर्गत रूपों में होने वाले स्वनिमिक परिवर्तनों का अध्ययन होता है। कभी कभी एक ही रूप के एक से अधिक ध्वन्यात्मक आकार होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अलग अलग या अनेक रूप न मानकर एक ही रूप माना जाता है। यह रूप स्वनिमिक नियमों से ही संभव है। उदाहरण के लिए 2, 12, 42 में से दो संख्या सूचक निम्नलिखित रूप में है। 2, 12 + 12 = 12, 42 + 42 = 42। रूप स्वनिमिक नियमों के द्वारा ही यह ज्ञात हो सकेगा कि 2, 2, 3 विभिन्न रूप न होकर एक ही रूप की तीन भिन्न ध्वन्यात्मक आकृतियां या परिणति है। शब्द विज्ञान शब्द के अध्ययन को ही शब्द विज्ञान कहा जाता है। कभी कभी विशिष्ट प्रभाव के लिए सामान्य में परिवर्तन करके भी भाषा को आकर्षक बनाया जाता है। इन सभी बातों का विचार इसमें किया जाता है। इसके अंतर्गत शब्दों के प्रकार, उनकी रचना प्रक्रिया, शब्दों के आगम आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। शब्दकोश निर्माण का संबंध शब्द विज्ञान से ही है। सामान्यतः रूपीम विज्ञान के अंतर्गत ही शब्दों का अध्ययन भी होता है, किंतु प्रत्येक विषय में विशिष्टता के कारण शब्द विज्ञान अपने आप में अध्ययन का एक अलग शाखा के रूप में स्वीकृत हो चुका है। शैली विज्ञान का संबंध विशेषतः साहित्य में भाषा के प्रयोग से है। इसमें यह देखा जाता है कि साहित्य या बातचीत में प्रभाव की दृष्टि से किस प्रकार के स्वनों, रूपों, शब्दों, वाक्यों या अर्थों आदि को छोड़ा जाए और किन्हें संयुक्त किया जाए। यह अपने में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। इसे स्वन क्वेश्चन में ध्वनि रूप वाक्य विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। यह भाषा के शैलीगत प्रयोग में संप्रेषणीयता, छंद, रस आदि के धरातल पर अपनी नवीनता एवं विशिष्टता अवश्य स्पष्ट करता है। आज इस दिशा में इतना अधिक अध्ययन हो रहा है कि इसे भी भाषा विज्ञान के एक विभाग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अन्य इसके अतिरिक्त भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं के वर्गीकरण, भाषा भूगोल, भाषा के कालक्रम विज्ञान, भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज, लिपि विज्ञान, बोली विज्ञान एवं क्षेत्रीय पद्धति को भी कतिपय भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा विज्ञान के विभाग के रूप में स्वीकृत किया है। क्षेत्रीय पद्धति भाषा भूगोल का ही एक अंग है। भाषा के अध्ययन में भूगोल आज एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वस्तुतः इसके द्वारा हम दो बोलियों के अंतर साम्य की खोज एवं उसके क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। इस विभाग का धीरे धीरे विस्तार भी हो रहा है, इसलिए भाषा भूगोल को भी भाषा विज्ञान का एक विभाग स्वीकृत किया जाना चाहिए। बोली विज्ञान में बोली का ऐतिहासिक, तुलनात्मक एवं समकालीन सभी दृष्टियों से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से भी बोली का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से बोली का अध्ययन बोली भूगोल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार बोली भूगोल एवं बोली विज्ञान एक दूसरे से संबद्ध है, बल्कि बोली भूगोल को बोली विज्ञान का एक अंग माना जा सकता है। लिपि भाषा का अंग न होने के कारण प्रत्यक्षतः भाषा विज्ञान के अंतर्गत न आने पर भी उससे असंबद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि लिखित भाषा में हमें लिपि का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए भाषा विज्ञान के अंतर्गत इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें लिपि की उत्पत्ति, विकास, शक्ति, गुण, दोष एवं उपयोगिता पर विचार होता है। अतः इसे भी भाषा विज्ञान के एक विभाग के रूप में स्वीकृति मिलनी चाहिए। भाषा विज्ञान अध्ययन की पद्धतियाँ। भाषा विज्ञान के अध्ययन में अनेक पद्धतियों का सहारा लिया जाता है, जिसमें प्रमुख है वर्णनात्मक पद्धति, संरचनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, प्रायोगिक पद्धति। वर्णनात्मक पद्धति, इस पद्धति द्वारा किसी एक भाषा का किसी एक काल की संरचनात्मक विशेषताओं का विवेचन विश्लेषण किया जाता है। इस तरह इस पद्धति के दो पहलू हैं, एक सैद्धांतिक तथा दूसरा भाषा संबद्ध। सैद्धांतिक पक्ष में उन सिद्धांतों का विवेचन होता है जिनके आधार पर किसी भाषा विशेष का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, तथा किसी का रचनागत विवेचन प्रस्तुत करना ही भाषा संबंध पहलू है। इस पद्धति को एककालिक या कालक्रमिक भी कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति का संबंध किसी एक विशेष काल की भाषा से रहता है। काल के किसी एक बिंदु पर भाषा का अध्ययन एककालिक कहलाता है, तथा 26 जनवरी 1992 को हिंदी किसी भाषा के जीवन के एक काल बिंदु से लेकर परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए दूसरे काल बिंदु तक का अध्ययन विश्लेषण कालक्रमिक कहलाता है। यथा प्राप्त सामग्री के आधार पर हिंदी के 1300 ईस्वी से लेकर 1995 तक के विकासशील रूप का कालक्रमिक अध्ययन हम कर सकते हैं। वस्तुतः वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक भाषा अध्ययन पद्धति भी यही है। वर्णनात्मक पद्धति का विकसित रूप संरचनात्मक पद्धति कहलाता है। वर्णनात्मक अध्ययन ही ऐतिहासिक अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। हम जब तक भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित नहीं हैं, तब उसके सही इतिहास की खोज नहीं कर सकते। संरचनात्मक पद्धति, हर भाषा की अपनी संरचना होती है। भाषा वैज्ञानिक का कार्य उसी की खोज होता है। इस प्रकार किसी भी संरचना पर किसी रूप में किया गया कार्य मूलतः संरचनात्मक भाषा विज्ञान का ही कार्य है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान की जड़ें ब्लूमफील्ड में है, किंतु इसका वास्तविक रूप उनके शिष्यों हाकेट, फ्राइज, नाइडा, हैरिस, हिल आदि में मिलता है। वस्तुतः इस पद्धति में भाषा की स्वनिम, रूपिम, वाक्यात्मक व्यवस्थाएं किस प्रकार भाषा को संरचनात्मक रूप देती हैं, तथा कौन कौन से कारक किस रूप में सहायक होते हैं आदि का अध्ययन विवेचन विश्लेषण होता है। तीसरी पद्धति ऐतिहासिक पद्धति। इतिहास का तात्पर्य है अतीत, अर्थात बीता हुआ। तात्पर्य यह है कि इस पद्धति में भाषा के प्राचीन स्वरूप की खोज एवं उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी एक भाषा के ही समकालीन किन्हीं दो कालों के रूपों के अध्ययन की पद्धति ऐतिहासिक पद्धति कहलाती है। इस पद्धति द्वारा ही हमें यह ज्ञात हो पाता है कि आज वर्तमान किसी शब्द का प्राचीन स्वरूप क्या था, उसका क्या अर्थ था, इन परिवर्तनों का क्या आधार है, और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर भाषा परिवर्तन संबंधी नियमों का गठन होता है। ग्रीम नियम जैसे ध्वन्यात्मक परिवर्तन संबंधी नियमों का गठन इसी अध्ययन का परिणाम है। यदि प्राचीन कालीन एवं वर्तमान हिंदी के मध्य हुए परिवर्तनों का विवेचन विश्लेषण किया जाए एवं उनके परिवर्तन से संबंधित नियमों का निर्धारण किया जाए, तो इसे ऐतिहासिक अध्ययन की संज्ञा दी जाएगी। यह अध्ययन हमेशा दो समयों यहाँ समय के दो बिंदुओं के संदर्भ में किया जाता है, इसलिए इसे द्विकालिक पद्धति भी कहा जाता है। चौथी पद्धति है तुलनात्मक पद्धति। इस पद्धति द्वारा एक से अधिक भाषाओं के किसी एक काल के स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन होता है। उदाहरणार्थ हिंदी या अंग्रेजी, फारसी या संस्कृत आदि के स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन हम उन भाषाओं के एक निश्चित काल के स्वरूपों को लेकर कर सकते हैं। यह अध्ययन पद्धति हमें भाषाओं के वर्गीकरण एवं उनके परिवारों की परिकल्पना में सहायता देती है। पारिवारिक वर्गीकरण का आधार तुलनात्मक भाषा अध्ययन ही है। पांचवा, प्रायोगिक अनुप्रयुक्त पद्धति। भाषा विज्ञान के अध्ययन की इस पद्धति का उपयोग आज के जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका सर्वाधिक उपयोग दूसरी भाषा शिक्षण, अनुवाद विज्ञान आदि में होता है। इसके अतिरिक्त मानसिक रोगियों की चिकित्सा, उच्चारण त्रुटियों के आधार, किसी समुदाय की संस्कृति आदि के ज्ञान के संबंध में भाषा की इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कतिपय भाषा वैज्ञानिकों ने इसे व्यवहारिक पद्धति कहकर नगण्य बताया है, पर आधुनिक वैज्ञानिक युग में विज्ञान के इस बढ़ते प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता। आज ज्ञान विज्ञान की विविध शाखाओं में इसका सहारा लिया जा रहा है। भौतिक शास्त्र, जिसने हमें संसार के अनेक साधन दिए हैं, इसके प्रयोग के बिना पंगु हो जाएगा। इन पद्धतियों के अतिरिक्त आज अनेक पद्धतियां प्रचलित हो रही हैं। इनमें चाम्स्की की रूपांतरक प्रजनक व्याकरण पद्धति एवं फिलमोर की केस ग्रामर पद्धति उल्लेख्य है। चाम्स्की की पद्धति वर्णनात्मक पद्धति की असफलता एवं कमी का प्रतिफल है। इस पद्धति द्वारा भाषा की संभाव्य क्षमता का विश्लेषण भी संभव है और भाषा का अधिक उपयोग भी। फिलमोर की पद्धति पाणिनी के अधिक निकट है, जिसमें वाक्यों का विवेचन कारकीय आधार पर होता है। अब हम आते हैं भाषा विज्ञान का अन्य शास्त्रों से संबंध। मनुष्य की भाषा का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाली ज्ञान की शाखा भाषा विज्ञान कहलाती है। मनुष्य अपनी भाषा का उपयोग अपने हर दैनंदिन कार्यों में करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शास्त्र को भाषा का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का संबंध मानव जीवन से संबंधित हर क्रियाकलापों एवं ज्ञान विज्ञान की शाखाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बना रहता है। यह बात दूसरी है कि किसी से कम होता है एवं किसी से अधिक। भाषा विज्ञान एवं अन्य शास्त्रों के पारस्परिक संबंध का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है। पहला, भाषा विज्ञान और साहित्य। भाषा विज्ञान एवं साहित्य में सर्वाधिक संबंध है। अपनी प्रकृति में भाषा विज्ञान विज्ञान है एवं साहित्य कला, दोनों के मध्य संपर्क होने का माध्यम है भाषा। भाषा जहां भाषा विज्ञान के लिए साध्य है, वहां साहित्य के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम। साहित्य मुख्यतः भाषा विज्ञान के अध्ययन हेतु सामग्री संकलन का कार्य करता है। किसी भी भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन उस भाषा की उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से ही हो सकता है। भाषा का क्रमिक विकास कैसे हुआ और आज किस रूप में विकसित है आदि प्रश्नों का हल साहित्य के द्वारा ही संभव होता है। साहित्य ही यह बता सकता है कि प्राचीन वैदिक भाषा को किस तरह व्याकरण के नियमों से शुद्ध एवं परिष्कृत करके उसके संस्कृत रूप का विकास हुआ, क्योंकि वैदिक भाषा के उत्तर काल में लिखित रामायण, महाभारत आदि संस्कृत के महाकाव्यों में वह रूप विद्यमान है। साहित्य से ही यह बोध होता है कि किस तरह व्याकरण के नियमों से मुक्त कोई दूसरी भाषा भी जनसाधारण में उस समय प्रचलित थी। जिस समय वैदिक धर्म का संस्कार और परिष्कार हो रहा था, क्योंकि प्रकृति एवं पाली भाषा का साहित्य उस भाषा को आज तक सजोए हुए है। साहित्य से ही यह पता लगता है कि किस तरह संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई और खड़ी बोली ब्रज, अवधि, बघेली, भोजपुरी आदि बोलियों का प्रादुर्भाव हुआ तथा खड़ी बोली उत्तरोत्तर विकसित होती हुई आज एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में प्रचलित है। सच पूछा जाए तो साहित्य ने ही भाषा विज्ञान के अध्ययन को जन्म दिया है, क्योंकि जिस समय पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत के वर्ण्य वांगम्य का अध्ययन किया और उसके रूपों की तुलना ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि भाषाओं से की, तभी से भाषा विज्ञान का विकास हुआ। इस प्रकार यदि कहा जाए कि साहित्य भाषा विज्ञान का जनक है तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। विभिन्न भाषाओं के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से ही भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण संभव हो पाया। जिन भाषाओं का साहित्य लुप्त है उनका अध्ययन या उनका परिवार निर्धारण कठिन कार्य है। यही नहीं, किसी भाषा के विभिन्न अंगों यथा ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य की संरचना तथा उनसे निकलने वाले अर्थ के अध्ययन का आधार भाषा विशेष का साहित्य होता है। यह अध्ययन चाहे ऐतिहासिक हो या एककालिक अथवा विवरणात्मक। एक बात और, जहाँ साहित्य भाषा के अध्ययन के लिए विपुल सामग्री एवं आधारभूमि प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर भाषा की व्यवस्थित जानकारी से कई साहित्यिक समस्याएं सुलझाने में सहायता मिलती है। साहित्यिक रचनाओं की प्रामाणिकता, प्राचीनता एवं शुद्ध पाठ के निर्णय में भाषा विज्ञान से सर्वाधिक सहायता प्राप्त होती है। वीरगाथा काल की रचनाओं की प्रामाणिकता के निर्णय का आधार उसकी भाषा है एवं भाषा विज्ञान उसकी कसौटी। भाषा विज्ञान और व्याकरण। किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग एवं शुद्ध लेखन व्याकरण द्वारा ही संभव है। व्याकरण भाषा विज्ञान को विरासत रूप में बहुत कुछ देता है। वह किसी भाषा का दिग्दर्शक ही नहीं होता अपितु पथ प्रदर्शक भी होता है। तात्पर्य यह है कि व्याकरण भाषा विज्ञान के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। यहाँ एक प्रश्न विचारणीय है कि क्या व्याकरण और भाषा विज्ञान एक ही है, जैसा कि लोगों को महसूस होता है। एक समय था जब व्याकरण एवं भाषा विज्ञान को एक समझा जाता था, किंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। व्याकरण किसी समय विशेष के एवं भाषा के शुद्ध प्रयोग संबंधी नियमों का समूह है, जबकि भाषा विज्ञान का वर्णनात्मक पद्धति द्वारा किसी भी भाषा की समस्त संरचनात्मक विशेषताओं का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। व्याकरण भाषा विज्ञान द्वारा प्रस्तुत सामग्री का प्रयोग करते हुए ऐसे नियमों का निर्माण करता है जिनसे भाषा का शुद्ध प्रयोग किया जा सके। व्याकरण किसी भाषा तक ही सीमित रहता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषाओं के व्याकरणिक अध्ययन के साथ एक साथ कई भाषाओं का तुलनात्मक विवेचन भी करता है। व्याकरण किसी एक भाषा के सिद्ध एवं निष्पन्न रूपों की ही व्याख्या मीमांसा करता है, जबकि भाषा विज्ञान सिद्ध एवं असिद्ध, प्रचलित एवं अप्रचलित तथा शुद्ध एवं अशुद्ध सभी रूपों की मीमांसा एवं व्याख्या व्यवस्था करता है, विवेचना करता है। व्याकरण में केवल संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय आदि रूपों का ही विवेचन किया जाता है, जबकि भाषा विज्ञान में इन भाषा रूपों के अतिरिक्त ध्वनियों, वाक्यों, अर्थों का भी प्रयोग किया जाता है। व्याकरण केवल इतना ही बताता है कि अग्नि शब्द एक वचन है, संज्ञा है, स्त्रीलिंग है आदि आदि, पर भाषा विज्ञान इस सब के अलावा यह भी बतलाता है कि यह किस तरह अपने मूल रूप अग्नि से विकृत होकर पहले अग्नि बना फिर आग बना। व्याकरण एक निश्चित काल तक सीमित रहता है, जबकि भाषा विज्ञान का क्षेत्र इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। व्याकरण केवल नियमों या सिद्धांतों के आधार पर भाषा की विवेचना करता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा के अनुशीलन के आधार पर नियमों का निर्धारण करता है। व्याकरण भाषा का दार्शनिक व्याख्या करता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके उसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। व्याकरण केवल नियम, उपनियम एवं अपवाद की ही व्याख्या करता है, जबकि भाषा विज्ञान इससे दो कदम और आगे बढ़कर भाषा की ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक व्याख्या करता है। प्रत्येक शब्द के क्रमिक विकास का इतिहास भी प्रस्तुत करता है। वस्तुतः भाषा विज्ञान यथार्थपरक है, क्योंकि वह भाषा में प्रचलित सभी प्रयोगों को ग्रहण कर उनका अध्ययन करता है, जबकि व्याकरण आदर्शवादी है, उसमें केवल शिष्टजनों की भाषा ही स्थान पाती है। पाणिनि भाषा वैज्ञानिक एवं व्याकरण दोनों थे। भाषा वैज्ञानिक के रूप में उस समय में प्रचलित समस्त रूपों का उन्होंने विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत किया। व्याकरण के रूप में उन्होंने उनमें कुछ रूपों को ही स्वीकार किया, शेष को या तो अस्वीकृत कर दिया या अपवाद के रूप में रखा। व्याकरण दो प्रकार का होता है, वर्णनात्मक, दूसरा व्याख्यात्मक। वर्णनात्मक व्याकरण किसी भाषा के शब्द रूपों का प्रकृति, प्रत्यय के आधार पर वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता हुआ विविध नियमों का निर्धारण करता है। इसके लिए वर्णनात्मक भाषा विज्ञान सामग्री प्रदान करता है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी इसका सर्वप्रमुख उदाहरण है। व्याख्यानात्मक व्याकरण का संबंध भाषा की दार्शनिक व्याख्या से होता है। उदाहरण के रूप में पतंजलिकृत महाभाष्य को लिया जा सकता है। उपर्युक्त दोनों व्याकरणों में वर्णनात्मक व्याकरण भाषा विज्ञान के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि उसके ऐतिहासिक, तुलनात्मक एवं सामान्य विवेचन को आधार बनाकर ही भाषा विज्ञान अपने अनुसंधान की दिशा में प्रवृत्त होता है और यह खोज करता है कि अमुक शब्द का मूल रूप क्या था और किन परिस्थितियों से गुजरता हुआ वह अपने वर्तमान रूप तक पहुंचा है। व्याकरण ही भाषा विज्ञान को विविध ध्वनियों रूपों एवं प्रयोगों से परिचित कराता है। यही नहीं, वह भाषा की प्रवृत्ति एवं उसके प्रयोगों से भाषा विज्ञान को अवगत तो कराता ही है, साथ ही वह यह भी बताता है कि अमुक भाषा में कितनी ध्वनियाँ प्रचलित हैं, कितने वर्णों का प्रयोग होता है, उनके उच्चारण की विधि क्या है, उनमें से कौन से सार्थक ध्वनियाँ हैं और कौन से निरर्थक, और शब्द के वर्तमान रूप कौन हैं तथा उनके प्रयोग में क्या विशेषता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा विज्ञान को व्यवस्थित रूप देने के लिए सर्वाधिक कच्चा माल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त व्याकरण भाषा विज्ञान के स्वर्ण विज्ञान, पद विज्ञान, शब्द विज्ञान और अर्थ विज्ञान के अध्ययन में भी काफ़ी सहायता प्रदान करता है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि दोनों विज्ञानों में अंतर की अपेक्षा संबंध अधिक है। भाषा विज्ञान और इतिहास। इतिहास और भाषा विज्ञान का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इतिहास इसी घटनाओं का चिट्ठा है जिसमें समाज की दिशा को मोड़ दिया है। भाषा समाज से संबंध होने के कारण इनकी बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित है। प्रत्येक समाज की अपनी एक प्रमुख भाषा होती है जो अन्य शास्त्रों के संपर्क में आने पर कुछ शब्द उन समाजों से ग्रहण कर लेती है तथा कुछ शब्दों में वे समाज परिवर्तन कर डालते हैं। भाषा विज्ञान को ध्वनि परिवर्तन संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी सामाजिक इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। सामाजिक इतिहास की इतिहास ही यह बता सकता है कि किस तरह भारत में अभीरों ने आकर आर्य भाषा को परिवर्तित कर दिया, कैसे संस्कृत शुद्ध रूप का परित्याग करके सौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी, लाठी, पैसाची आदि प्राकृतिक रूप में परिणत हो गई और कैसे फिर वह विविध अपभ्रंशों का रूप ग्रहण करके वर्तमान लोक भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो गई। यही नहीं, भाषा विज्ञान को भाषा परिवर्तन के साथ साथ विविध स्वर्ण परिवर्तनों, रूप परिवर्तनों एवं अर्थ परिवर्तनों का क्रमिक इतिहास जानने के लिए भी सामाजिक इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। चाहे धार्मिक आंदोलन रहे हो या राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना, सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यथा भारत की हिंदी में आज अरबी, फारसी, अंग्रेजी के तमाम शब्द आ गए हैं, ध्वनियों का उच्चारण, रूप तथा वाक्य रचना भी प्रभावित हुई है। यह भारत पर मुस्लिम और अंग्रेजी आधिपत्य का प्रभाव है। अतः विदेशी भाषाओं के प्रभाव का इतिहास यदि हम हिंदी के इतिहास में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें भारत के इतिहास की ओर उन्मुक्त होना होगा। इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान को भाषा के प्राचीन रूपों की खोज एवं विश्लेषण में ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए हिंदी के वर्तमान स्वरूप को तभी समझा जा सकता है जब उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा जाए। इस प्रकार यह निसंकोच कहा जा सकता है कि जहाँ इतिहास भाषा विज्ञान को ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन में सहायता पहुँचाता है, वहाँ भाषा विज्ञान भी अपने वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा इतिहास के लिए प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक स्थिति आदि के अध्ययन की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए के रूप में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के अभिलेखों को लिया जा सकता है। भाषा विज्ञान एवं मनोविज्ञान। भाषा एवं विचार परस्पर अधिक निकट हैं। विचार को अव्यक्त भाषा और भाषा को व्यक्त विचार माना जाता है। विचार अमूर्त होता है और भाषा मूर्त। विचार का अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है। उसके मूर्त हो जाने पर वह भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय हो जाता है। अतः भाषा विज्ञान के अध्ययन में भाषा विज्ञान सहायक सिद्ध होता है। इसी से आजकल मानसिक रोगियों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण एवं उनका उपचार करने में भाषा विज्ञान से सहायता ली जाती है। भाषा के अध्ययन में भी मनोवैज्ञानिक जानकारी का उपयोग किया जाता है। भाषा के बौद्धिक पक्ष अर्थात अर्थ का संबंध विचार से है, इसलिए अर्थ परिवर्तन पर मानसिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। सच पूछा जाए तो प्रत्येक शब्द और अर्थ की स्थिति का निर्धारण ही बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। मस्तिष्क ही किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करता है। अर्थ निर्धारण, अर्थ भिन्नता जैसे संपृक्त विषय के विवेचन में मनोविज्ञान की सहायता ली जाती है। शीतला की कृपा का अर्थ कैसे चेचक निकलना माना जाता है और असुर को कैसे राक्षस कहा जाने लगा आदि प्रश्न ऐसे ही मन स्थिति से संबद्ध है, जिसका उत्तर हमें मनोविज्ञान ही दे पाता है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द और अर्थ की मूलाधार मानसिक प्रक्रिया है और इसी मानसिक प्रक्रिया के द्वारा स्वर्ण विकार, रूप विकार, अर्थ विकार आदि का भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऐसा अध्ययन जिसमें मनोविज्ञान एवं भाषा विज्ञान एक दूसरे के सहायक हो, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा विज्ञान और समाजशास्त्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के उत्थान और पतन का प्रभाव उस पर भी बराबर पड़ता रहता है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, अतः सामाजिक विकास और पतन के साथ साथ उसका भी उत्थान और ह्रास होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे जैसे समाज सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास के सोपानों पर चढ़ता जाता है, वैसे ही भाषा भी अपने ध्वनियों, रूपों, अर्थों के साथ परिवर्तित होती रहती है। वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी का विकास इसी प्रवृत्ति का द्योतक है। हिंदी प्रदेश की ओर जब हम एक सरसरी निगाह डालते हैं तो पाते हैं कि पहले समाज केवल वर्गों में ही विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बंटवारा उनके कार्य के अनुसार किया गया था, पर यह बंटवारा बहुत दिनों तक न चल सका। धीरे धीरे वर्गों के भी वर्ग बन गए और भाषाओं में वर्ग सूचक नियमों का प्रसार होने लगा। दत्त सूचक नाम ब्राह्मण वर्ग के द्योतक थे, सिंह क्षत्रिय वर्ण का सूचक था, मल्ल लाल वैश्य का सूचक था और दास शूद्र वर्ग का अर्थ द्योतक करता था। पर आज इन वर्गों के भी उपवर्ग हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण, शर्मा, शुक्ल, मिश्र, उपाध्याय, पांडे आदि, क्षत्रिय, तोमर, चौहान, परमार, शाक्य, वैश्य, वारह, सैनी, चौसैनी, जायसवाल, अग्रवाल, खंडेवाल, शूद्र, जाटो, वाल्मीकि, चमार, कहार आदि। समाजशास्त्र केवल सामाजिक विकास का ही बोध नहीं कराता, अपितु अन्य समाजों के प्रभाव से उत्पन्न सामाजिक रीति रिवाज, आचार व्यवहार, बोलचाल, व्यवहार आदि का भी विवरण प्रस्तुत करता है। इन सब के बावजूद वह यह भी बताने का प्रयास करता है कि एक विजयी एवं प्रगतिशील समाज की भाषा में प्रचलित शब्द दूसरी पराजित एवं प्रतंत्र समाज की भाषा पर अपना प्रभाव डाला करते हैं और वह समाज उन्हें किस तरह सहर्ष अपनाने में गौरव का अनुभव किया करता है। हिंदी क्षेत्र में पति पत्नी के लिए मियाँ बीबी, माता के लिए अम्मी जान, अम्मा आदि शब्द मुस्लिम प्रभाव से तथा मम्मी डैडी, आंटी अंकल, पापा अंग्रेजी प्रभाव से इसी प्रकार आए हैं। वस्तुतः भाषा वह साधन है जो उन्हें समाज के हर पहलू को समझने में सहायता प्रदान करता है। भाषा के द्वारा ही किसी समाज के सामाजिक रिवाज, रीति नीति की जानकारी हमें हो पाती है। दूसरी तरफ समाज भी भाषा के अध्ययन हेतु हमें विपुल सामग्री प्रदान करता है। किसी भी जाति की सामाजिक रचना एवं संस्कृति समझे बिना उस जाति की भाषा का पूरा अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भाषा विज्ञान के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान होना निहायत आवश्यक है। भाषा विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। भाषा की शिक्षा से भाषा विज्ञान का निकट का संबंध है। भाषा वैज्ञानिक ही यह निर्णय करता है कि भाषा में कब क्या सिखाया जाए। भाषा की सहायक एवं पाठ्य पुस्तकों की रचना, व्याकरण का निर्माण, वर्तनी का निर्धारण, लिपि का निर्माण एवं सुधार आदि शिक्षा के ही ऐसे विषय हैं जिनमें भाषा विज्ञान की अनिवार्य रूप से सहायता ली जानी चाहिए। किस अवस्था में कौन सी एवं कितनी भाषाएं सिखाई जाएं, इसका निर्णय भी राजनीतिज्ञों को नहीं अपितु भाषा विज्ञान को करना चाहिए। इन भाषाओं के शिक्षण में तो भाषा विज्ञान और भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भाषा विज्ञान की ज्ञान एवं यंत्रों की सहायता से बड़े थोड़े समय में बहुत अच्छे ढंग से विदेशी भाषा की शिक्षा दी जा सकती है। भाषा विज्ञान की एक शाखा प्रयोगात्मक भाषा इसी दिशा में हमें सर्वाधिक सहायता प्रदान करता है। भाषा विज्ञान और दर्शन शास्त्र। दर्शन, जिसका अर्थ होता है जीवन और जगत के आध्यात्मिक रहस्य को खोलना, का भाषा विज्ञान से अटूट संबंध है, क्योंकि जीवन और जगत के व्यवहार के लिए अत्यंत अनिवार्य साधन भाषा ही है। पाश्चात्य देशों के दार्शनिकों ने ही सर्वप्रथम भाषा का विवेचन करके वाणी के रहस्य का उद्घाटन किया। इस दृष्टि से सर्वप्रथम प्रयास प्लेटो का है था। उनके अनुसार शब्दार्थ का निर्धारण सदैव प्रकृति या स्वभाव से होता है, पर परवर्ती दार्शनिकों ने इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना। अरस्तु के कथनानुसार शब्द के अर्थ का निर्धारण परंपरा से होता है। भारतीय दार्शनिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि जो कुछ हम अनुभव करते हैं वाणी या भाषा उसी का बाह्य रूप है। यह वाणी की अभिव्यक्ति और कुछ नहीं मनन और चिंतन की प्रारंभिक क्रिया है अथवा आत्मानुभूति की प्रकट होने की चेष्टा है। भाषा के बौद्धिक पक्ष अर्थात अर्थ का संबंध मानव की आत्मानुभूतिमयी क्रिया से है। शब्दों के अर्थ विवेचन में दर्शन शास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है और भाषा विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अर्थ संबंधी जानकारी का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता है। भाषा विज्ञान और भूगोल। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव जैसे मानव के हर पहलू पर पड़ता है, उसी प्रकार उसकी भाषा पर भी पड़ता है। भूगोल में न केवल पृथ्वी के गोल होने का अर्थ निहित है, अपितु उससे शीत, उष्ण, समशीतोष्ण आदि विविध प्रकार के जलवायु के अर्थ का भी बोध होता है, जिसका प्रभाव भाषाओं पर समय अनुसार पड़ा करता है। प्रायः ऐसा देखने में आया है कि शीत प्रधान देशों में दंत ध्वनियाँ त, थ, द नहीं पाई जाती और उनके स्थान पर वात्स्य ध्वनियाँ ट ठ ड बोली जाती हैं, क्योंकि इनका वाक यंत्र इतना अधिक नहीं खुल पाता जितना कि उष्ण देशों में सुगमता से खुल जाता है। शायद यही कारण है कि अंग्रेज सदैव देहरादून को देहरादून, तोताराम को ठोठाराम कहा करते हैं। इन्हें ध्वनि परिवर्तनों का ज्ञान भूगोल के द्वारा आसानी से किया प्राप्त होता है। जिस क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण उर्वर होता है वहाँ की भाषा की प्रबल एवं विकसित होती है, तथा क्षेत्र का वातावरण निर्बल होता है जैसे पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्र, तो वहाँ की भाषा उर्वर क्षेत्र की अपेक्षा निर्बल होती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र का भाषा भाषी आसानी से जा नहीं पाता। मैदानी क्षेत्र में भाषाओं के विकसित और राजस्थान में अविकसित होने का यही कारण है। भूगोल का प्रभाव भाषा की शब्दावली एवं उसके अर्थ से जुड़ा है। जिस क्षेत्र में जो वस्तु पैदा होती है उसका नामकरण उसी के आधार पर होता है। कश्मीर में केसर अधिक पैदा होती है, कश्मीर का नाम शायद इसी के आधार पर पड़ा है। इसी प्रकार पांच नदियों सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावि के कारण पंजाब सदैव बर्फ से ढका रहने के कारण हिमालय, अनेक राज्यों का भूभाग होने से राजस्थान, अनेक बौद्ध विहारों का भूखंड होने के कारण बिहार आदि नामों के अर्थ इसी ओर संकेत करते हैं। भूगोल भाषाओं के सम निर्धारण में एवं भौगोलिक परिस्थितियों के निर्धारण किसी भाषा में भाषाई परिवर्तन आदि के विवेचन विश्लेषण में भी काफी सहायता पहुंचाता है। भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान। भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान। मानव विज्ञान में मानव के विकास का विविध दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है और भाषा स्वयं मानव के विकास का प्रतीक है, अतएव दोनों अपने अध्ययन के लिए किसी न किसी रूप में सामग्री लेते रहते हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य में तरह तरह के अंधविश्वास घर करते रहते हैं जिनका लेखा जोखा मानव विज्ञानों में मिलता है। इन अंधविश्वासों का भाषा पर भी प्रभाव पड़ता है। मानव का विकास दो रूपों में होता है, प्रथम है शारीरिक विकास और द्वितीय है सांस्कृतिक विकास। मानव जाति किन रूपों में विकसित हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ, किस तरह इसने अपनी प्रारंभिक पशु अवस्था से धीरे धीरे सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए, किस तरह मानव ने सर्वप्रथम गुफा गेह से निकलकर पशुपालन प्रारंभ किया, फिर कैसे चरागाह की खोज में दल के रूप में इधर उधर घूमने लगा, कैसे फिर कृषि कर्म की ओर मुड़ा, किस तरह गृह निर्माण की योजना बनाई, राज्य व्यवस्था का संचालन कैसे किया आदि आदि समस्याओं का समाधान मानव विज्ञान आसानी से कर देता है। मानव ने अपने सांस्कृतिक विकास के साथ साथ भाषा का भी संस्कार किया है। विश्व की प्राचीन एवं समृद्ध भाषाएं आज इस बात के प्रमाण है कि उनमें भाषा भाषियों के सांस्कृतिक विकास का इतिहास अंकित है। भारत की संस्कृत भाषा अपने सुंदर एवं कुछ इसी प्रकार का अर्थ संजोए हुए है। इसी तरह यूनानियों के ग्रीक में, जर्मनियों के जर्मन में, अंग्रेजों की अंग्रेजी में सांस्कृतिक विकास की गाथा विद्यमान है। मानव विज्ञान भाषाओं के उद्भव और विकास की कहानी तो प्रस्तुत करता ही है, साथ ही साथ ध्वनियों के विविध स्वरूपों, शब्दों के विविध रूपांतरों, अर्थों के विविध उत्कर्षों एवं अपकर्षों को भी जानने में सहायता पहुंचाता है। मानव विज्ञान ही यह बताता है कि किस तरह मानव पद के आरंभिक क्षेत्र को छोड़कर अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए गद्य के निर्माण की ओर अग्रसर हुआ और किस तरह उसने गद्य को तार्किकता, विवरणात्मकता, लाक्षणिकता, नादात्मकता, प्रौढ़ता आदि गुणों से परिपूर्ण किया। भाषा विज्ञान और भौतिक शास्त्र। मनुष्य जब कुछ कहता है तो स्वन उसके मुंह से निकलने के बाद और किसी के कान तक पहुंचने के पूर्व आकाश में लहरों के रूप में प्रवाहमान होते हैं। इन लहरों के सही ज्ञान के लिए भाषा विज्ञान को भौतिक शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। भौतिक शास्त्र ही यह बता सकता है कि ये लहरें किस प्रकार की होती हैं और अन्य ध्वनियाँ एवं भाषिक ध्वनियों में क्या अंतर होता है। आज भाषा विज्ञान की प्रयोगशालाओं में काइमोग्राफ, कृत्रिम तालु, ओसोलोग्राफ आदि यंत्रों के माध्यम से सभी प्रकार की स्वर व्यंजक उच्चारित ध्वनियों के अध्ययन की सुविधा भौतिकी के आविष्कार के उपरांत ही प्राप्त हुई है। इस प्रकार ध्वनियों के अध्ययन में भौतिक शास्त्र ने काफी उपकार किया है। भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान। मानव के शरीर की संरचना का लेखा जोखा शरीर विज्ञान के अंतर्गत सन्निहित होता है। शरीर विज्ञान से ही यह स्पष्ट होता है कि मानव शरीर के फेफड़ों, स्वर तंत्रियों, कंठ पिटक, काकल, तालु, मूर्धा, वत्स, दंतमूल, दंत, जिह्वा, ओष्ठ आदि ध्वनि उत्पादन एवं ध्वनि उच्चारण में सहायक अवयवों की संरचना कैसी है और इनमें किस तरह क्रिया होती है, किस तरह मुंह से निःसृत ध्वनि को ग्रहण करने वाले कानों की संरचना हुई, कैसे वे ध्वनि को ग्रहण करते हैं, कैसे ध्वनि कण कुहरों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है, कैसे मस्तिष्क को ध्वनि के माध्यम से पदार्थ भाव या विचार का बोध होता है, मस्तिष्क की संरचना कैसी है, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है आदि विविध शरीर संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान शरीर विज्ञान ही करता है। इसी प्रकार सुर लहर अक्षर बलाघात आदि का अध्ययन भी शरीर विज्ञान के बिना असंभव है। यही नहीं, भाषा विज्ञान शरीर संबंधी कमियों आदि की ओर इंगित कर शरीर विज्ञान के अध्ययन की सामग्री को प्रस्तुत करता है। भाषा विज्ञान और पुरातत्व। पुरातत्व भाषा विज्ञान को विरासत में शिलालेख, सिक्के, प्राचीन लिपि, प्राचीन भाषा आदि देता है जो कि उसके अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्राह्मी, खरोष्ठी आदि प्राचीन लिपियों के उद्भव और विकास का इतिहास पुरातत्व ही की सहायता से प्रश्न करने में भाषा विज्ञान को काफी सहायता मिलती है। गौरी शंकर, हीरा शंकर ओझा ने नगरी अंक और अक्षर एवं प्राचीन लिपिमाला ग्रंथों में भाषा एवं लिपि के विकास की जो गाथा प्रस्तुत की है वह पुरातत्व की महत्ता कृपा है। भाषा विज्ञान और संगीत शास्त्र। संगीत शास्त्र के अंतर्गत भाषा विज्ञान का संबंध केवल गायन विद्या से होता है क्योंकि गायन में ही भाषा का प्रयोग होता है। गायन के स्वर भाषा के ही अंग होते हैं। संगीत के स्वरों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति को समझने में काफी सहायता मिलती है। प्राचीन वैदिक संस्कृत मूलतः संगीत प्रधान ही थे। वेद मंत्रों को उच्चारण एवं उनके अर्थ को समझने के लिए वेदाचार्यों ने तीन सुरों उदात, अनुदात, स्वरित की कल्पना की थी। संगीत में सुर, लय और तुकांत मिलने के लिए कभी शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। इससे शब्दों के उच्चारण में तो परिवर्तन होता ही है, साथ ही साथ उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार अनेक ध्वनि परिवर्तन, बलाघात, रूप परिवर्तन एवं अर्थ परिवर्तन के कारणों को जानने के लिए भाषा विज्ञान को संगीत शास्त्र का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। भाषा विज्ञान और समीक्षा शास्त्र। भाषा विज्ञान और समीक्षा शास्त्र यद्यपि साहित्य के दो रूप हैं, फिर भी दोनों में महत्वपूर्ण संबंध है। साहित्य शास्त्र या समीक्षा शास्त्र साहित्य के विविध अंगों और उपांगों, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, पिंगल शास्त्र आदि की समीक्षा तो करता ही है, साथ ही साथ वह भाषा वैज्ञानिकों की मान्यताओं के आधार पर साहित्य की भाषागत समीक्षा भी प्रस्तुत करता है। भाषा का वर्गीकरण और विश्लेषण उसके शब्द रूपों को लेकर किया जाता है और यह देखा जाता है कि अमुक काव्य में तत्सम, तद्भव, देशज आदि शब्दों में से किसकी प्रधानता है, क्या उनमें विदेशी शब्दों का भी आगमन हुआ है, क्या उस काव्य की भाषा नदात्मक सौंदर्य से उत्प्रोत है, क्या उस उनमें प्रतीकों की भरमार है आदि। भाषागत इन सभी समस्याओं का समाधान समीक्षा शास्त्र के द्वारा आसानी से हो जाता है। आज अनेक कवियों की भाषा का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जहाँ भाषा विज्ञान और समीक्षा शास्त्र की पारस्परिक दूरी को समाप्त कर रहा है, वहाँ समीक्षा शास्त्र द्वारा भाषा के कलात्मक रूप पर अधिक बल देने के कारण भाषा विज्ञान समीक्षा शास्त्र के अधिक निकट आता चला जा रहा है। इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर भी समाप्त होता है। धन्यवाद।